आज मुरली सबने सुनी है, किसने नहीं सुनी हाथ उठाए, सबने सुनी है, ध्यान से सुनी है। आज बाबा के महावाक्यों में बहुत भावनाएं भरी थी, भावुकता थी और साथ साथ ज्ञान भी था। तो कौन सी बात ये याद है आपको? आज बाबा ने बहुत भावुक बन गए थे बच्चों के प्रति। कैसे और आज बाबा ने माताओं को भी बहुत याद किया है। और बाबा ने यह भी कहा, मैं बच्चों को श्रेष्ठ कर्म कैसे करना है ये सिखाता हूँ। बाबा ने बोला, बच्चे कलियुग के रस्म रिवाज अलग है, संगमयुग के रस्म रिवाज अलग है। तो इसके बारे में आप लोगों ने चिंतन किया आज, क्या क्या अलग है? जब हम भक्त थे क्या करते थे, क्या समझते थे, क्या बोलते थे? अभी बाबा मिलने के बाद, संगमयुग में आने के बाद हमारे रीत रिवाज क्या हो गए? सबसे पहले बाबा ने आज क्या सुनाया? लौकिक में बच्चे माँ बाप के क्या करते हैं? पांव छूते, नमस्कार करते हैं। लेकिन संगम के रीत रिवाज क्या है? कहते हैं मैं ही बच्चों को नमस्ते करता हूँ। क्यों? सिर्फ अपने निरंकारपन को दिखाने के लिए? बाबा अपने बच्चों का महत्व दिखाते हैं, क्योंकि हम साधारण शरीर में है ना, और साधारण रूप में है, साधारण स्थिति में है। हम अपने आप को बहुत साधारण समझते हैं। अपने जो पहले का जीवन है, सत्युग से लेकर जो जीवन हमने जीना है वो भूल गए, इसलिए अपने आप को बहुत साधारण समझते। वैसे भी बाबा के बच्चे संगम युग के अंत में या कलयुग के अंत में क्या है? साधारण है, उतना अमीर तो है नहीं, है ना? इसलिए बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम कितने बड़े हो। इसलिए मैं तुम बच्चों को नमस्ते करता हूं, गुड मॉर्निंग करता हूं, क्योंकि तुम सत्युग से लेकर आज तक 5000 वर्ष तक क्या किया? शरीर लेना, शरीर छोड़ना, सुख भोगना, दुख भोगना, सुख देना, सुख लेना, दुख देना, दुख लेना, ये सारे किया ना। और भगवान बाबा के नाम से भक्ति करना, जप तप व्रत करना, हजारों साल तक हमने उसको ढूंढा है ना। तो इसलिए बाबा कहते, बच्चे मैं संगम युग में बच्चों का सेवाधारी बन के आया हूं। सेवादारी का मतलब क्या है? सेवाधारी अर्थात सेवक। बाबा बोलते मैं ओबीडियंट सर्वेंट हूं, तुम बच्चों का ओबीडियंट माना आज्ञाकारी सेवक। सेवक का काम क्या होता है? मालिक जो कहेगा वो करना, हमेशा उसका ध्यान रखना, हमेशा उसके सामने रहना, हमेशा उसकी बात मानना, हमेशा उसकी आज्ञा सिर माथे। तो अभी हमें क्या करना है? बाबा ने तो बोल दिया, बच्चे तुम बहुत मेरे से भी श्रेष्ठ हो, मेरे से भी ऊंचे हो, तो हम है उसके लिए योग्य है बाबा ने बोला मैं बच्चों को नमस्ते करता हूँ, बच्चों की सेवा में आया हूँ, तो हम भी बाबा को नमस्ते करते हैं। नमस्ते करने का अर्थ क्या है? हाथ जोड़ना, झुकना, सिर्फ इतना ही। हम नमस्ते किसको करते हैं? बड़ों को। किस भावना से करते हैं? ये अपने बड़े हैं, आदर भावन से, सम्मान भावन से, भक्ति भावन से, भय से, नम्र चित्त होकर, उनका कदर करके नमस्ते करते। नमस्ते करना माना गौरव दिखाना, आदर दिखाना। तो उतना बाबा के प्रति हमारे मन में सम्मान है, कदर है, प्यार है। देखा है कभी अपने आप को? चेक किया? चेक करना बाबा हम बच्चों के प्रति कितना भावुक है, कितना सम्मान देते हैं, कितना हम लोगों की पालना करते हैं, उतना मैं आत्मा उसके लिए योग्य हूं। मैं भी बाबा का, तो बाबा को कदर करना माना क्या है भाई जी? बाबा को रिस्पेक्ट देना मतलब क्या है? बाबा जो कहते हैं वो करना, श्रीमत पर चलना। श्रीमत पर चलना अर्थात क्या? बाबा ने हमें जो आज्ञाएं दी है उनकी धारणा करना। बाबा ने सबसे पहला धारणा श्रीमत क्या दी है? योगी बनो, पवित्र बनो, और सबसे पहले अपने को ये देह भूलकर आत्मा समझना। हम तो सुनते आए 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, 30 साल से, तो हम बने हैं आत्मा। इसका अभ्यास हम कर रहे हैं रोज माता है बोलो। जब से हम उठते हैं, सुबह उठते ही सबसे पहली स्मृति क्या होनी चाहिए? बाबा को तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, कहने वाला कौन है? शरीर है, आत्मा है, याद रहता है? उठते ही मैं आत्मा शिव बाबा को गुड मॉर्निंग कहती हूं, ये सबसे पहला श्रीमत है। अपने आप को आत्म समझना। और दूसरा श्रीमत क्या है? आत्मा बनकर आत्माओं को देखना। ये छोटी छोटी बातें हैं, पुरानी बातें हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें हम कितना पक्के हैं, इस बात को हमने कितना धारण किया है। किसी को भी आप देखते हैं तो दृष्टि आत्मा पर जाती है? जाती है? चेक करो। किसी से मैं बात करती हूं या बात करता हूं, किससे बात करता हूं? चेहरा से, आंखों से, शरीर से, या किससे? आत्मा से बात करती हूं, ये स्मृति रहती है? है पक्का? अगर नहीं है तो अभी से हम लोगों को ये अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान कहने के लिए बहुत सहज है, लेकिन जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं उतना उतना इसकी गहराई बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। इसलिए ये नहीं समझना भाई रोज हम दो समय क्लास में जाते हैं, योग करते हैं, हाँ दीदी के कहने अनुसार सेवा करते हैं, इतने में संतुष्ट नहीं होना। ये हमारा साधना का जीवन है, पुरुषार्थ का जीवन है, अभ्यास का जीवन है, अध्ययन करने का जीवन है। इसलिए हर आत्मा, हर बाबा के बच्चे अपने 24 घंटों में ईश्वरीय विद्या के लिए, ईश्वरीय अध्ययन के लिए थोड़ा टाइम निकाल के रखो। इसमें संतुष्ट नहीं होना, हम बाबा के बच्चे बन गए, जितना हो सके उतना योग करते हैं, रोज क्लास में जाते हैं, नहीं। क्योंकि बाबा कई बार बोला है, लगातार 3 साल तक बाबा ने बोला है, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जब अंतिम समय आता है, अंतिम माना विनाश का समय नहीं, जब हम शरीर छोड़ते हैं वो हमारा अंतिम समय, जब हमारा अंतिम समय आता है हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, किसके प्रति नष्ट मोह, बच्चों के प्रति, घर के प्रति, जिसको बच्चे घर नहीं है उनको कैसे किससे नष्ट मोह बनना है, जैसे हम लोग हैं, हमारे ना आगे है ना पीछे है, सिर्फ ऊपर है, तो हम लोगों को किससे नष्ट मोह बनना है, तो तुरंत बन जाएंगे, जब बिस्तर पर पड़े रहते हैं, अभी हम लग रहा है भाई मैं जा रहा हूं, तब नष्ट मोह हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, बहुत समय से अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो योग करने का जो प्रैक्टिस है, इसमें क्या करना होता है, योग में हम क्या करते हैं, क्या करते हैं आप लोग योग में जब बैठते हैं करते क्या है, बाबा का गुण अनुभूति करते हैं और आत्मा की स्मृति में रहते हैं और बहने क्योंकि बाबा ने कई बार बोला है इस ईश्वरीय पुरुषार्थ का जो अंतिम लक्ष्य है क्या है, कभी याद किया आप लोगों ने, खुशी खुशी से बाबा की याद में शरीर छोड़ना, शरीर से अलग होना, ये अभ्यास करते हैं। रोज इसका अभ्यास करना है, इसलिए बाबा कई बार बोलते बच्चे अपने आप को अवतरित आत्मा समझो, अवतार समझो, जैसा शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते हैं, अपना कर्तव्य करते हैं, फिर उस शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें भी करना पड़ेगा रोज, जब सुबह उठते हैं तब ये अनुभव करो मैं आत्मा परम धाम से इस शरीर में प्रवेश करती हूं। फिर जब कर्म करना होता है, कर्म करते 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 जब कर्म पूरा हो जाता है तब बाबा क्या कहते हैं, जैसा कछुआ, कछुए की मिसाल देते हैं ना बाबा, जब कछुआ जब खाना अपने खाने के लिए ढूंढने जाता है तब अपना कर्मेंद्रिय को बाहर निकालता है, जब काम पूरा हो गया अंदर। ऐसे ही हम लोग जब सेवा करते हैं, सेवा पूरी हो जाते हैं, काम काज पूरे हो जाते हैं, तब फ्री हो जाते हैं, तो क्या करना, क्या करना, अपने कर्म इंद्रियों को समेट कर अपने एक जगह, जहां घर पे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, वहां बैठ के शरीर से मुक्त हो जाना, शरीर से अलग होने का अभ्यास करना। आपने तो अद्भुत जीवन कहानी पढ़ी होगी ना बाबा की, यज्ञ इतिहास, उसमें बाबा कैसे प्रैक्टिस करते थे। ब्रह्मा बाबा जो इस सृष्टि का सबसे श्रेष्ठ आत्मा है, नेक्स्ट टू गॉड, परमात्मा के बाद अति श्रेष्ठ कौन है? ब्रह्मा बाबा। वो कैसे पुरुषार्थ किया जानते होंगे ना, सुने होंगे, पढ़े होंगे। बाबा दीवार पर लिखा करते थे, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, पत्नी यशोदा आत्मा, यशोदा आत्मा, उनकी पुत्री निर्मल शांता दादी, निर्मल शांता आत्मा, 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 और बच्चे नारायण किशन, आत्मा, आत्मा, आत्मा। कई सालों तक प्रैक्टिस किया बाबा ने। तो हम किस झाड़ के पत्ते हैं? भगवान ने जिस शरीर पर प्रवेश करते हैं, भगवान जो काम करता है वो कार्य वो करते हैं, वो आत्मा ही इतना पुरुषार्थ किया, तो हम कैसे करते हैं? इसलिए सिर्फ हम बीके बने हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, सेवा करते, इसमें संतुष्ट नहीं होना। अपना समय फिक्स करो, अपने पुरुषार्थ के लिए थोड़ा समय निकालो, रोज एक घंटा, आधा घंटा, जिसको जितना पॉसिबल होता है उतना समय निकालो। स्पेशली समय रखो, जैसा घर में बच्चों के लिए कुछ समय निकाल के रखते हैं, अगर बच्चे में भी एक कोई बच्चा थोड़ा मंद बुद्धि वाला हो तो उनके लिए विशेष अटेंशन देते हैं ना, वैसे ये हमारे बच्चे कौन है? मन बुद्धि संस्कार। 63 जन्मों तक मन बुद्धि कहां भटके हुए हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए इनको सुधारने के लिए कुछ समय निकाल के रखो। आज किसी ने मुरली चिंतन किया? मुरली का चिंतन किया समय निकाल के? मुरली रिपीट किया? एक किसने रिपीट किया, हाथ उठाओ। जो लिखते हैं वही रिपीट करते होंगे, जो नहीं लिखते उनको क्या करना है? आपस में चर्चा करनी है मुरली के बारे में। वो नहीं कमरे में वो माता ने ऐसे किया, ये माता ने ऐसे किया, वो उसने इतना तंग किया, वो उतना तंग किया, वो खर्राटे मारती है, वो चिल्लाती है, ये तो नहीं, नहीं। क्योंकि मधुबन में आए हैं ये बहुत बड़ा भाग्य है। आपने 30 तारीख के संडे की मुरली सुनी होगी, उसमें बाबा ने क्या बोला, मधुबन धरनी पर जो आए हैं बहुत बड़ा भाग्य जमा कर दिया। उस पार्टी को बोला, आपको पता नहीं है, फिर भी जो मधुबन धरनी पर पांव रखा उसका भाग्य बन गया। और इस मधुबन धरनी पर महीनों भर सेवा करते हैं, उनका क्या हाल है? समझते हैं हम इतना बड़ा भाग्यशाली है। देखो पार्टी वाले भट्टी करने आते हैं ना, 3 दिन के लिए आते हैं, इतना दूर से भागे भागे आते हैं, 3 दिन उनकी छुट्टी है, लेकिन आप लोगों को महीने भर। इसलिए मधुबन में जब तक है तब तक समय व्यर्थ नहीं गवाना। थकते तो नहीं है सेवा कर करके? रोटी में भी जाना है, सब्जी में भी जाना है, टोली में भी जाना है, नहीं नहीं ना। फिर भी इसमें भी थोड़ा समय निकालो। जब आपस में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, घूमने जाते हैं, फालतू दृश्य नहीं देखना। जब आप अपने गांव में घर में रहते हैं, घूमने जाते हैं, रोज सुबह शाम को मिलता है टाइम। देखो बाबा के घर में आपको खुले हवा में घूमने का मौका मिलता है, तो उस समय क्या करना? जाके एकांत में जाके जहां खुला जगह है वहां बैठ के योग करो, ज्ञान की चर्चा करो, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करो, क्योंकि योग का जो उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। जब तक मन एकाग्र नहीं होता तब तक आपका संस्कार हो, पाप हो, भस्म नहीं होंगे। इसलिए योग माना इतना ही नहीं, मैं आत्मा हूं, मेरा पिता शिव बाबा, शिव बाबा शिव बाबा नहीं, ये तो शुरुआत है। योग का अर्थ है मन को एकाग्र करना, किस पर? बाबा पर। तो ये अभ्यास करते रहना, जितना हो सके उतना शरीर से बाहर अलग होने का अभ्यास करो। लौकिक में जो योगासन सिखाते हैं ना, वो लोगों को जो जिसको टेंशन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, डिप्रेशन, उनको रिलैक्स करने के लिए एक अभ्यास कराते हैं योगासन। कैसे कराते हैं? उस शवासन में सुलाते हैं, सुला के बोलते हैं कि शरीर में प्राण शक्ति है, प्राण शक्ति माना आत्मा की शक्ति, वो प्राण शक्ति यहां पाद से लेकर सिर तक फैली रहती है। इसका अर्थ क्या है? हम आत्मा यहां बैठी है तो आत्मा की शक्ति जो है ना, वो सारे पूरे शरीर में व्याप्त हुआ रहता है। तो कहते हैं इस उस शक्ति को धीरे धीरे क्या करो, नीचे से लेकर ऊपर लेके आओ, धीरे 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 यहां केंद्रित करो, प्रकृति के बीच में। बस यही समझ लो सारे शक्ति मेरी इधर आ गए, इसको भूल जाओ, तब रिलैक्स मिल जाएगा। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया, बच्चे तुम हो आत्मा, कहां रहती हो? भ्रुकुटी के बीच में। तो इसलिए बाबा कहते जो भक्ति मार्ग में जो अंत होता है वहीं से ज्ञान मार्ग शुरू होता है। कैसे? देखो, भक्ति मार्ग में हम क्या कहते थे बाबा, एक क्षण के लिए हमें दर्शन दो, बोलते थे ना। बस अगर भक्त वो कोई सन्यासी महात्मा जो भी है साधक, एक बार साक्षात्कार कर दिया तो क्या हो गया, उसका पूरा हो गया साधना, संतुष्ट हो गया। लेकिन यहां जब हमें बाबा मिल गया तब से शुरू हमारा पुरुषार्थ। इसलिए बाबा देव को आज क्या बोला, भक्ति मार्ग के रसम रिवाज अलग, यहां कला ये भी एक है। जहां भक्ति में अंत होता है ज्ञान मार्ग में शुरू होता है। और भक्ति मार्ग में हम भगवान को क्या बोलते थे, हे परमात्मा मुझे सहायता करो, है ना, मेरी रक्षा करो, मुझे मदद करो, ये बोलते थे ना। तो यहां के क्या रिवाज है, वहां हम भगवान से मांगते थे, पुकारते थे, यहां भगवान कहते बच्चे मुझे मदद करो, है ना, कितना वंडरफुल। वहां कहते थे भगवान मुझे मदद करो, तो यहां हम कहते हैं भगवान कहता है बच्चे मदद करो, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा कार्य पूरा नहीं होगा। कौन सा कार्य? विश्व का परिवर्तन कार्य, पवित्र युग का स्थापन करने के कार्य। तो हमें कैसे सहयोग देना है, मदद देना है बाबा को, कैसे बाबा का कार्य में मदद कैसे बनेंगे, मददगार कैसे बनेंगे? बाबा का सबसे पहला श्रीमत कौन सा है, धारणा, बच्चे तुम भी पवित्र हो, दूसरों को पवित्र बनाओ, क्योंकि पवित्रता से ही सृष्टि का परिवर्तन होगा। पवित्रता चार प्रकार की होती है, कौन सी मनसा वाचा कर्मणा सम्मन संपर्क सबसे हाईएस्ट जो पवित्रता है मनसा पवित्रता। लेकिन मनसा पवित्र बनने के लिए काया पवित्र बनना बहुत जरूरी है। जब शरीर को पवित्र बनाएंगे तब वाचा वाचा का भी पवित्रता चाहिए। वाचा की पवित्रता माने क्या है? हमारे वचनों से बोल से किसी को दुख नहीं होना चाहिए। कई लोग कहते हैं सत्य बोलने से लोगों को दुख होता है। नहीं होता। वो खुद जो व्यक्ति झूठ बोलता है लेकिन वो नहीं चाहता दूसरे मेरे को झूठ बोले, वो चाहता है सब मेरे सामने सच ही बोले, है ना? अनुभव किया है इसको आपने? एक व्यापारी है वो दूसरों को झूठ बोलता रहता है लेकिन वो ये चाहता है कि कोई मेरे से झूठ नहीं बोले, सच ही बोले, है ना? हर व्यक्ति सच सच्चाई सत्य चाहता है लेकिन बोलने का ढंग सही होना चाहिए। इसलिए कहता सत्यम वद प्रिय वद। सत्य बोलना चाहिए लेकिन कैसे बोलना चाहिए? प्रिय शांति से प्रेम से बोलना चाहिए। अगर किसी ने गलती किया, हे तुमने ये काम किया ये गलती किया, सीधा बोल देते हैं तो उसको बुरा लगता है। हम कहते हैं सच्चाई कड़वी होती है। नहीं, सच्चाई बहुत मीठा होती है, बहुत मीठी होती है लेकिन बोलने का तरीका अपना है। इसके बाबा होते सत्य बोलो प्रिय बोलो। वैसे ही कर्मणा वाचा मनसा और सम्मन संपर्क। सम्मन दूसरों से हम किसी से सम्मन संपर्क रखते हैं वहां भी हमारी पवित्रता चाहिए। कैसे? सम्मन संपर्क पवित्रता कैसे रखे? आत्मिक दृष्टि, कोई भी दैहिक भावना नहीं होनी चाहिए। ये स्त्री है पुरुष है, ये भाई है मेरे भाई है, मेरी बहन है, मेरी पति है, मेरी पत्नी है। ये जो दैहिक संबंध दैहिक भाव है ना, ये नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं अलौकिक। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ नहीं करो, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। ये विशेषता है। घर गृहस्थ में भी रहते हैं लेकिन चिपके नहीं। कैसे? अनासक्त, कर्तव्य समझ के, निमित्त बन के। बाबा ने मुझे सेवा दिया है, ये सारे बाबा ने बताया ना। बच्चे अपने घर में कैसे रह रहे, ये नहीं समझो मैं गृहस्थी हूं घर में रहती हूं, नहीं। अपने आप को क्या समझो? मधुबनवासी समझो। मैं निमित्त मात्र घर में जा रही हूं जा रहा हूं। किस लिए? बाबा ने मुझे सेवा दिया है उस गृहस्थी को संभालने के लिए। ऐसे निमित्त भाव से जाओ तो क्या होता है? फंसेंगे नहीं कहीं। अपने आप को क्या समझेंगे? हम तो मूलतः कहां के? मधुबनवासी है, परंदाम वासी है। ये सारा सेवा के लिए आए हूं। ये हो गया लौकिक रसम रिवाज क्या थी और अलौकिक क्या थी। फिर भक्ति मार्ग में लौकिक में हम लोगों का क्या ये था रिवाज थी, कहते थे भगवान के जब मंदिर जाते तो क्या कहते थे? हाँ और अरे भगवान तुम तो ऊंचे थे ऊंच हो, हम तो नीच है पापी है खल है कपटी है, हाँ? तेरा चरण का धूल है वो है ये है। तो अभी क्या कहते हैं? हम तो भगवान के अति प्रिय संतान है, अति लाडले हैं, प्यारे हैं, उनके राइट हैंड है। हम भिखारी नहीं है, हम कौन है? दाता है, है ना? अंतर है ना वहां का और यहां का। तो ऐसे जब बाबा कोई भी बात मुरली में सुनाते हैं ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। ये अभ्यास रखो आप लोग। आज मुरली, जो मुरली सुनते हैं ना, जब मुरली क्लास में बैठते हैं, अपने आप को अकेला कर दो। कोई नहीं है मेरा आसपास, सिर्फ बाबा और मैं। बाबा मेरे लिए मुरली सुना रहे, ये ध्यान रखो। और ऐसे प्रैक्टिकल करो। शुरू शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट होगा, अभ्यास न होने के कारण थोड़े विचलित हो जाएंगे, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते रहो। तो एक जिसको लिखना आता है, एक नोटबुक तो लेते हैं, उसमें नोट करो आज बाबा ने नई बातें क्या सुनाई, आज बाबा ने क्या करने के लिए कहा, आज की नई पॉइंट क्या थी। बाबा कहते वहां के रीत रिवाज अलग, यहां के रीत रिवाज, उसके बारे में लिस्ट करो, सोचो क्या क्या, पहले उनका क्या है, हमारा क्या है। वहां का रीत रिवाज क्या है, मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलिष्ठ हूं, बलवान हूं, वहां का। यहां का क्या रीत रिवाज, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, हम सब भाई भाई है। ऐसे जो जो है ना अंतर, इसको नोट करके रखो। तो जो इसको जो आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, इसको जो लिख के पढ़ते हैं, यही आपका योग अध्ययन स्टडी हो गई। फिर बाबा ने बोला देखो ये ज्ञान इतना वंडरफुल है, आप जितना जितना अनुभव करते जाएंगे ना, उतना नया 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 आपको जानकारी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते बच्चे अनुभवी बनो। अनुभवी बनना, ये एक अनुभव में दो बातें हैं। एक तो अनुभव अपने आप होता है, जब हम योग में बैठते हैं, ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान का चिंतन करते हैं, तब कई बार अपने आप अनुभव होता है। एक दिन आप ऐसे योग में बैठे रहते हैं, योग करने चुपचाप बैठे रहते हैं, तो अपने आप बुद्धि योग कहां चला जाता है, खींच के ऊपर चला जाता है। ये अनुभव हुआ होगा ना भाई, योग करने का मकसद तो बैठते हैं कि योग नहीं लगा रहे, बैठते ही बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। कई बार योग करते 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 बहुत खुशी होती, इतनी खुशी होते है कि अनएक्सपेक्टेड, हम सोचा ही नहीं था। ये कई बार होता है। तो कई बार हम लोगों को अनुभव करना पड़ता है। कैसे? तो बाबा बोलते हैं कई बार हम आदि पुराणों की कहानी सुनते हैं, बाबा बच्चों के साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, है ना, क्रिकेट खेलते थे, तो हमें भी संकल्प आते हैं देखो वो कितने भाग्यशाली आत्मा है, बाबा के साथ साकार बाबा के साथ खेला है, हम नहीं खेल पाए, ऐसे संकल्प आते हैं ना। तो लेकिन इसको आप अनुभव नहीं कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते, किया है किसी ने? किसी ने किया? साकार बाबा को साथ में रख के उन्होंने जो पाया है, किया है, वो आपने किया है? नहीं किया ना? करना चाहिए, क्योंकि स्थूल में करना ही करना नहीं है। ये अनुभव किसको चाहिए? शरीर को चाहिए, आत्मा को चाहिए? आत्मा स्थूल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्म है। तो बाबा भी यही भी कहता है, ये ज्ञान जो है आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं। जब आत्मा धारण करती है, शरीर अपने आप उसको पा लेता है। हम लोग क्या करते हैं, जब बाबा आते थे ना, अब एक बाप था, ओम शांति भवन में हो या मेडिटेशन हॉल में हो, तो दादियां वगैरह बाबा के सामने बैठती थी, बाबा को टोली खिलाते थे, बाबा उनको टोली खिलाते थे, हम लोग तो पीछे बैठे रहते थे। हमें भी इच्छा होती थी नहीं होती थी, आपको भी इच्छा होती है नहीं होती, तो क्या करना है? अच्छा अनुभव करो, क्योंकि सारे सूक्ष्म है। अपने सूक्ष्म शरीर से, अंतर्वाक शरीर से बाबा के सामने जाकर बैठो। बाबा ने कई बार बोला है, बच्चे यहां स्थूल में हद है, लिमिटेशन है, समय की पाबंदी है, आप सबको यहां बाबा के सामने छोड़ेंगे नहीं, तो क्या करो, वतन में आ जाओ, वतन में छोड़ो। जब बाबा वहां कर रहा है ना, तो अपने आप को भी वहां लेके जाओ, अनुभव करो बाबा मुझे खिला रहे। जब दादी को खिलाते तो समझो बाबा मेले को खिला रहे, जब दादी बाबा को खिला रहे तो क्या समझो, मैं भी बाबा को खिला रहा। कर सकते नहीं कर सकते, तो करके देखो कितना आनंद आता है। उन्होंने जो आनंद पाया वो आनंद हमें मिल जाएगा, क्योंकि बाबा प्रत्यक्ष संगम युग में ये अनुभव कराता है, करने वाले चाहिए। कई बार बाबा ने अव्यक्त मुरले में, बच्चे मुझे यूज करो, मैं तैयार हूं, तुम्हारा सब कुछ मुझे दो, जो भी बोझ है, जो भी परीक्षा है, परिस्थिति, दुख कष्ट है, मुझे दे दो, जिम्मेवारी मुझे दे दो। हम देते नहीं, हाँ बाबा देते बोलते, देते नहीं दिल से, देखो तो देखो, उसको मालिक बना के बिठाओ अपने घर में, अपने दिल में, अपने मन में, टोटल बुद्धि से समर्पित हो जाओ, तो आनंद देखो। इसलिए ये ज्ञान है अनुभव का ज्ञान, अनुभव करने के ज्ञान। आप जितना जितना अनुभव करते हैं उतना उतना आप शक्तिशाली बनते हैं, उतना आप में धारणा होती है। इसलिए योग में अनुभव करने का प्रैक्टिस करते रहो रोज, जब भी योग में बैठते हैं, जितना भी टाइम मिलता है। इसलिए बाबा इस पर अव्यक्तवाणी में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने बोला ना, जितने भी ड्रिल बाबा ने सिखाई, वो ड्रिल का अभ्यास करो। कब करना है? जब टाइम मिलता है। ऐसा नहीं खास एक घंटा आधा घंटा निकाल कर बैठना, ऐसा नहीं। जब किसी भी समय पर आप एक मिनट भी फ्री हो जाएंगे, क्या करो, ड्रिल करना शुरू करो। एक सेकंड में शरीर से बाहर, एक सेकंड में अंदर, एक सेकंड में बाहर, एक सेकंड में शरीर में, फिर एक सेकंड में वतन में जाओ सूक्ष्म लोक में, फिर एक सेकंड में शरीर में आओ, फिर एक सेकंड में परंधाम। अनुभव करो, ये अनुभव करना है, ऐसा नहीं अपने आप नहीं होता, ये न पात समझना ये कल्पना है, नहीं, क्योंकि हमें ज्ञान है ना। सूक्ष्म लोक है या नहीं है, है? देखा है, तो फिर उसका अनुभव करने में क्या दिक्कत है? अगर इस तरह का आप वैरायटी योग करेंगे, अलग अलग तरह से योग करेंगे, आपको शक्ति मिलेगी, खुशी मिलेगी, हिम्मत आएगी। बाबा ने मुरलियों में कई तरह की युक्तियां बता दी, इसलिए हम मुरली सुनते समय ये ध्यान रखना चाहिए, आज बाबा ने योग करने के लिए क्या युक्ति दी। कई बार बाबा ने बोला, बच्चे योग नहीं लगता तो क्या करो, चित्र के सामने जाके बैठ जाओ। जैसे बाबा उदाहरण देते हैं, सीढ़ी का चित्र है, कल्पवृक्ष का चित्र है, त्रिमूर्ति का, उसके सामने जाकर बैठो, बैठ के देखते रहो, सिर्फ देखते रहो, चित्र को देखते रहो, कुछ नहीं करो, तो देखते देखते क्या हो जाएगा, आपको टचिंग्स आते रहेंगे, उसके बारे में बाबा बताता जाएगा, ये त्रिमूर्ति क्या है, त्रिमूर्ति का रहस्य क्या है, ये राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है, विष्णु है, ब्रह्मा है, शंकर है। कल्पवृक्ष देखो, ब्राह्मण कहां बैठे हैं, ऊपर कौन है, ये ताल तालियां क्या है, इसके बारे में सोचते जाओ, ये योग हो जाएगा। ऐसा नहीं सदा का जब भी हम योग में बैठते हैं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, नहीं, इसका अलग अलग रूप से योग करो। कभी बाबा के साथ बात करो, बाबा आज आपने मुरली में हम लोग हम माताओं को कितनी महिमा की। बाबा आपने कहा हम आप माताओं का पांव दबाता हूं, ये अनुभव करो। पांव दबाना माना क्या है? पांव दबाना नहीं है, जब मन भारी हो जाता है, सिर भारी हो जाता है, ऐसा समझो बाबा मेरा माथा दबा रहा है। अनुभव करो, आपको प्रैक्टिकल अनुभव होगा, माथा हल्का हो जाएगा। कई लोगों को अनुभव हुआ होगा, जब हम घर में हो या कहीं ऑफिस में हो, कहीं व्यवहार बिजनेस में हो, किसी कारणवश मन विचलित हो जाता है, अवस्था खराब हो जाती है, बहुत हो जाता है, तब जाके बाबा कहके ऐसा करो, एक सेकंड में आपको हल्का हो जाएंगे एकदम। ऐसा नहीं जैसा शरीर बहुत तप रहा है उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालने से कितना आनंद मिलता है, उस तरह से मन हल्का हो जाता है। तो आप लोगों को हुआ होगा, हम लोगों को तो कई बार हुआ है ऐसा, क्योंकि मेरी सेवा है किताब बनाने की। किताब बनाना माना क्या करना पड़ता है? पहले टाइप करना पड़ता है, फिर उसका प्रूफ रीडिंग करना पड़ता है, फिर उसको पेज बनाना पड़ता है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। पढ़ 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 सिर दर्द भारी हो जाता था, तो बाबा कह के ऐसा कह एकदम ऐसा ठंडा हो जाता था, जब फ्री। ऐसा आप लोगों को भी हुआ होगा, नहीं हुआ तो ऐसा अनुभव करो, बाबा से सेवा लो। जब सेवा लेंगे सब सेवा करेंगे, करना पड़ेगा, क्योंकि सेवा किसी से हम सेवा लेते तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी ना। वैसे बाबा से सेवा लो और बाबा की सेवा करो, ठीक है। आज बाबा ने मुरलियों में बहुत कुछ बोला है, इतना बोला है, इतना बोला है, ज्ञान भी उतना भरा हुआ है और बच्चों के प्रति भावना स्नेह भी इतना भरा हुआ है। अगर आप सोचते सोचते जाओगे तो घंटों भर बैठे रहेंगे योग में, ठीक है। अभी हमारा योग कैसा होना चाहिए? अनुभव युक्त होना चाहिए। बाबा के साथ अनुभव करो, बाबा के साथ अपना रिश्ता बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ठीक है। ओम शांति।